हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 7। श्लोक क्रमांक 6 में भगवान ने बताया था किस प्रकार से उनका जो आविर्भाव है वो हमारे आविर्भाव से या हमारे जन्म से किस प्रकार से अलग होता है। अब ये प्रश्न हो सकता है कि भगवान आते ही क्यों हैं, और आज इस श्लोक की हम चर्चा करेंगे। आप में से काफी लोगों को श्लोक पता होगा, तो आइए देखते हैं अध्याय 4 का 7वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जहां पे भी और जब भी। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान, या उनका मत है कि भगवान कृष्ण केवल भारत में ही जन्म लेते हैं इसलिए ये प्रकट होते हैं और अन्य जगह प्रकट नहीं होते, इसलिए जो भगवान कृष्ण है वो हिंदुओं के भगवान हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, देश काल और परिस्थिति के अनुसार, लोगों की समझने की शक्ति के अनुसार भगवान अलग अलग जगहों पर प्रकट होते हैं। या तो वो स्वयं प्रकट होते हैं या अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं धर्म का प्रचार करने के लिए। और धर्म में भी दो प्रकार के धर्म होते हैं। एक है नैमित्तिक धर्म, जो हमें एक विशेष परिस्थिति में इसका हम पालन करते हैं। जीवात्मा कभी स्त्री है कभी पुरुष है, तो उसके अनुसार उसके स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, पति धर्म, राज धर्म इत्यादि होते हैं। ये नैमित्तिक है, सर्कमस्टेंशियल, किसी विशेष परिस्थिति के धर्म। और दूसरा धर्म जो होता है वो है भागवत धर्म, जो जीवात्मा के कर्तव्य होते हैं भगवान कृष्ण के प्रति। तो जब दोनों ही प्रकार के धर्मों की ग्लानि होती है, यानी वर्णाश्रम धर्म के धर्म का पतन होता है और साथ साथ भागवत धर्म का पतन होता है, तो दोनों की स्थापना के लिए भगवान आते हैं और देश काल परिस्थिति के अनुसार ज्ञान को वो देते हैं। और भगवद्गीता का ज्ञान जब भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, तो समझना चाहिए कि अर्जुन क्योंकि साक्षात भगवान के मित्र हैं, तो वो परम योग्य व्यक्ति हैं। इसलिए भगवान जो उनको ज्ञान दे रहे हैं उससे परे कोई ज्ञान नहीं है। और इस बात को, इसकी पुष्टि भगवान भगवद्गीता में भी करते हैं आगे जाकर के 7वें अध्याय में, कि जो मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, परम रहस्य है। तात्पर्य यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामी का अर्थ है भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण से इस बात को हम समझ सकते हैं। सूर्य का उदाहरण प्रभुपाद जी ने पिछले तात्पर्य में दिया था, उसी उदाहरण को आप विचार करें। सूर्य हमेशा जाज्वल्यमान रहते हैं, ऐसा नहीं है कि अंधेरे के समय, रात के समय सूर्य ठंडे हो जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि सुबह के समय सूर्य की सृष्टि होती है। भले ही सूर्य उदित होते हुए प्रतीत हों, लेकिन हमें समझना चाहिए कि सूर्य यथारूप ही प्रकट होते हैं, जैसे वो हैं वैसे ही प्रकट होते हैं। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का जन्म होता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन भगवान संपूर्ण शक्तियों के संग जैसे वो आध्यात्मिक चिन्मय स्वरूप में हैं वैसे ही प्रतीत होते हैं, वैसे ही प्रकट होते हैं जीवात्माओं के सामने। जिस प्रकार से सूर्य के अलावा किसी के अंदर शक्ति नहीं है कि जगत के अंधकार को नष्ट करे, उसी प्रकार से भगवान के अलावा किसी के पास शक्ति नहीं है कि जगत के अंधकार को नष्ट कर सके, अज्ञान को नष्ट कर सके। मुख्यतः स्पेशली भगवान के संबंध में हम सभी जीवात्माएं जब तक शास्त्र से नहीं सुनते हैं तब तक हम भगवान के बारे में नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पे आ करके शास्त्रों को प्रकट करते हैं, स्वयं भी अपने श्रीमुख से बोल रहे हैं, ताकि हम उनके बारे में समझ करके उनके चरणों की प्राप्ति कर सकें। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। थोड़ा इस लाइन को मैं समझाता हूं। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर होता है, चतुर्युग का मतलब हो गया सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, और ये कुल मिलाकर के 43 लाख साल का होता है ये एक चतुर्युग। तो इसको 1000 बार आप कर दें तो ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, यानी कि एक मनु 71 चतुर्युग तक राज्य करते हैं। तो इस समय सातवें मनु जो चल रहे हैं विवस्वान का नाम है, वैवस्वत मनु बोलते हैं, क्षमा कीजिएगा, विवस्वान सूर्यदेव का नाम है, उनके बेटे वैवस्वत मनु, उनका राज्यकाल चल रहा है। और वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग में भगवान श्री कृष्ण गोलोक से आते हैं। पहली चीज तो हमें ये सीखना चाहिए कि कितना बड़ा हमारा भाग्य है कि भगवान कृष्ण जब जिस द्वापर युग में आए साक्षात गोलोक विहारी, और उसके बाद चतन महाप्रभु आए के रूप में आए, उनके मात्र 500 साल बाद हम लोगों को मानव शरीर मिला है और उनके बारे में जानने को मिला है। कितने अरबों कोटि सृष्टियों से हम इस जगत में हैं इस बात की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये हमारा बड़ा बहुत बड़ा भाग्य है, ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि प्रभुपाद की कृपा से हम लोग चतन महाप्रभु के मिशन से जुड़ने का प्रयास जुड़ पाए हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक इस मिशन में सेवा करके हम इस लाभ को प्राप्त कर सकें। अपने छोटे से जीवन में छोटी छोटी चीज़ों के पीछे लुभाव प्रभावित हो जाने के छोटी छोटी चीज़ों से प्रभावित हो जाने के बजाय अपने चित्त को भगवान में अधिक से अधिक लगाना चाहिए, और इससे हमें परम लाभ प्राप्त होगा। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोभ होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भगवान को कोई कर्म के अनुसार प्रकट नहीं होना पड़ता, इसकी चर्चा हमने छठे श्लोक में भी करी थी। तो अपनी इच्छा से भगवान प्रकट होते हैं, जैसे अपनी इच्छा से प्राइम मिनिस्टर जेल में आकर के देखते हैं कि जेल की व्यवस्था ठीक से चल रही है कि नहीं। धर्म के नियम वेदों में दिए गए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य धार्मिक हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान में विश्वास करते हैं लेकिन भगवद गीता और भागवतम को पढ़ने में और उसको पालन करने में उनकी रुचि नहीं होती है, तो ये लोग ऐसे लोग नास्तिक कहलाते हैं। खाली मुँह से बोलना कि हम भगवान में विश्वास करते हैं और भगवान की वाणी को पालन नहीं करना, ये नास्तिकता है। तो इसलिए जो व्यक्ति आस्तिक है उसका शास्त्र पर विश्वास होता है जो भगवान की आज्ञा है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान बोल रहे हैं करने के लिए वो धर्म कहलाता है। जब लोग इस प्रकार से भगवान के वचनों से विमुख हो जाते हैं तो भगवान अवतरित होते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं, जिसको मैंने भी कोट किया। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतनम। श्रील प्रभुपाद इस संबंध में बहुत अच्छा बताते हैं कि जिस प्रकार से कौन सी रोड पे किस तरफ चलना है इसका निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार सरकार करती है। उसी प्रकार से शास्त्र क्या है, धर्म क्या है, ये किसी की मनोधर्म के अनुसार नहीं होता। जो मन में आएगा वही धर्म है, जो जिसको मान लो, जो जैसा सोच लो वही ठीक है, इस प्रकार की धारणा करने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित होते हैं। भगवद गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान होता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है किस प्रकार से वेदों को ज्ञान की व्यवस्था की गई है। तमोगुण, रजगुण, असतगुण और अंततोगत्व असतगुण से परे दिव्य स्तर पर कुछ लोग होते हैं। तो तमोगुणी लोगों के लिए वेदों में इस प्रकार की आज्ञा है जिसका पालन करके वो क्रमशः रजगुण और फिर रजगुण के अनुसार जो आज्ञा उसका पालन करके सतगुण और फिर सतगुण की आज्ञा पालन करके क्रमशः वो दिव्य स्तर पे आते हैं। जन्म जन्मांतर इस प्रकार की प्रक्रिया चलती है। तो जो ये सामान्य तरीका है, और अगर कोई भक्ति करता है तो बहुत जल्दी भगवान के सारे गुणों से मुक्त होकर के वो दिव्य स्तर पे आ सकता है। तो शुरुआत में भले ही कोई भक्ति स्वीकार ना करे, लेकिन अगर वैदिक नियमों का पालन करता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना की शुद्धिकरण होता है। लेकिन असुर लोगों का यह प्रोपेगेंडा होता है कि वेदों की आज्ञा का पालन लोग ना करें और अपनी चेतना का विकास ना करें। प्रायः लोग आजकल के समाज में सब बोलते हैं कि वेद जो है वो एक माइथोलॉजी है या वेदों को मनगणन किसी ऋषि ने लिख दिया है, लेकिन ये सब बातें नहीं है। वेद साक्षात भगवान के निश्वास से प्रकट हुए हैं और ये अपौरुषेय हैं, इनको हम चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब कि ये वेद अपने आप में स्वयं प्रमाण है, उनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति वेदों का नियमों का पालन करता है और वेदों का उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना, जैसे भगवान गीता में बताते हैं वेदेषु सर्वैर अहम् एव वेद्यो, तो अगर वो भगवान को जानने का प्रयास करता है वेदों के अनुसार तो उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन जब कोई इस प्रकार से व्यवधान प्रस्तुत करता है असुर लोग पर्टिकुलरली, तो फिर भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। थोड़ा समझ में आना चाहिए कि भगवान बुद्ध का अवतार हुआ क्यों। भगवान बुद्ध जब ने देखा या भगवान ने देखा कि लोग वेदों की आड़ में पशु बलि कर रहे हैं और उससे मांस खाने को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो वेदों की इस फैसिलिटी का, ये कह सकते हैं इस आज्ञा का दुरुपयोग ना हो, इस कारण से भगवान आए और भगवान ने बोला कि आप अगर इस प्रकार से पशु बलि कर रहे हैं तो उससे अच्छा ये है कि आप अहिंसा का पालन करें। तो वो कहते थे कि नहीं, वेदों में लिखा है। तो वो फिर इसलिए भगवान बुद्ध ने इस प्रकार का प्रचार किया कि मैं वेदों को नहीं मानता। इसी कारण से जो बौद्ध सिद्धांत है उसको नास्तिक बोला गया है। अब एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि क्या आप भगवान बुद्ध को भगवान मानते हैं। हमने कहा वो अवतार हैं भगवान के, तो फिर आप उनकी शिक्षाओं को क्यों नहीं मानते। तो मैंने उत्तर दिया कि हम भगवान बुद्ध को या बुद्ध जी को भगवान इसलिए मानते हैं, उनका अवतार इसलिए मानते हैं क्योंकि श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। लेकिन बुद्ध की शिक्षा ये है, भगवान बुद्ध की शिक्षा ये है कि हमें वेदों को नहीं मानना चाहिए और वेदों का सार है श्रीमद् भागवतम। तो अगर हम श्रीमद् भागवतम को स्वीकार करते हैं तब तो हम भगवान बुद्ध को अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं तो फिर हम श्रीमद् भागवतम को नहीं स्वीकार कर सकते और फिर हम भगवान बुद्ध को अवतार नहीं स्वीकार कर सकते। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। हम भगवान बुद्ध को स्वीकार करते हैं अवतार के रूप में क्योंकि श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, लेकिन उनकी शिक्षाओं को नहीं स्वीकार करते क्योंकि हमें पता है कि असुरों को भ्रमित करने के लिए भगवान एक प्रकार की शिक्षा देते हैं। जैसे भगवान कृष्ण भी गोवर्धन लीला के समय में ऐसा बोलते हैं कि हमें देवताओं की पूजा करने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। तो हम समझ रहे हैं कि वहां पे भगवान कृष्ण, आचार्य लोग समझाते हैं कि भगवान कृष्ण विनोद में इस बात को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सीरियसली इस बात को बोल रहे हैं। तो इसलिए उस कंटेक्स्ट में, उस परिप्रेक्ष्य में भी भगवान कृष्ण की वाणी को भक्त लोग स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान की पूजा नहीं करें और हमारे कर्मों के अनुसार ही सब कुछ हमको मिल जाएगा, अपने प्रयासों से मिल जाएगा, किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ठीक से समझ में आना चाहिए। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। इसको मैंने समझा दिया। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए, इसको भी हमने चर्चा कर ली है। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती पर भगवान अवतरित होते हैं, वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं किस प्रकार से, जैसे जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने भी भगवान के बारे में बताया, लेकिन आप देख सकते हैं कि भगवान के बारे में बताने का परिणाम क्या हुआ। उनके ही शिष्यों ने उनसे, एटलीस्ट एक दो शिष्य ने उनसे दगाबाजी करके उनको सूली पे चढ़वा दिया, या फिर जो वहाँ के समाज के लोग थे वो लोग बहुत गुस्सा हो गए। तो आप ये देख सकते हैं कि जिन लोगों को वो प्रचार कर रहे थे उनकी चेतना बहुत निम्न कोटि की थी, इस कारण से वो पूरा ज्ञान नहीं दिए। बल्कि जीसस कहते भी हैं कि मैं बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ लेकिन आपके कान अभी उसको सुन नहीं सकते। सुन नहीं सकते का अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि उनकी चेतना उन बातों को ग्रहण नहीं कर सकती। और हम देखते हैं कि जो नर्सरी का स्टूडेंट है उसको बोला जाए कि 1-2 क्या होता है तो समझ नहीं पाएगा। उसको समझाया जाता है 1+1 क्या होता है, और 1+1 वो समझ सकता है लेकिन 1-2=-1 वो नहीं समझ सकता। तो आगे जाके जब उसके बुद्धि बढ़ेगी तो फिर वो इस बात को भी समझ पाएगा जो मैथ्स मैथमेटिक्स की उच्चतर ज्ञान है। तो इसी प्रकार से भगवान कभी या तो स्वयं प्रकट होते हैं या अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि व्यक्ति भगवान से सुन रहा है साक्षात या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि से सुन रहा है, ज्ञान वही रहता है। जैसे हम करंट को डायरेक्ट पावर हाउस से लें या फिर करंट को अपने पावर सॉकेट से लें, जो सॉकेट पावर हाउस से अंततोगत्वा कनेक्टेड है तो वही करंट हमको प्राप्त होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो हमें जितनी आवश्यकता है उतना करंट हमको एक सॉकेट से भी मिल सकता है, बशर्ते वो सॉकेट पावर हाउस से कनेक्टेड हो। उसी प्रकार से कोई भी गुरु, कोई भी व्यक्ति अगर परंपरा में ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो फिर हमारे जीवन को वो प्रकाशित कर सकता है, भले ही वो बहुत योग्य ना हो, लेकिन अगर उस ज्ञान को वो रिपीट कर रहे हैं तो फिर हम उस ज्ञान से लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे अब इसे ही प्रमाण है, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़कर लोगों का जीवन इसलिए परिवर्तित हो रहा है क्योंकि प्रभुपाद जी शिक्षाओं को जो परंपरा से आ रही है, भगवान कृष्ण से जो शिक्षाएं आ रही हैं उसी को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको तोड़ मरोड़ नहीं रहे हैं। तो इस ज्ञान को अगर हम परंपरा में प्राप्त करते हैं, जैसे भगवान ने चौथे अध्याय की शुरुआत में बताया, और आप दूसरों लोगों को भी बताते हो इस भगवद गीता को पढ़कर समझ करके, तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे किस प्रकार से उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है। और उसमें हमारी योग्यता यही रहेगी कि इस ज्ञान को हम पूरी बिल्कुल भी परिवर्तित ना करें, अपने से कुछ जोड़े नहीं और कुछ काटे नहीं। भगवद गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं और यह गणितीय नियम प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। इस उदाहरण को मैंने आपको दे दिया था अभी कि गणित पढ़ने की जो गहराई है वो बढ़ती चली जाती है लेकिन विषय वही रहता है। ऐसा नहीं है कि जो 12वीं का जो विद्यार्थी है वो 1+1=3 लिख देगा। नर्सरी का जो बच्चा 1+1=2 लिख रहा है तो वो 12वीं क्लास के विद्यार्थी को भी पता होगा, लेकिन 12वीं क्लास के विद्यार्थी को बहुत सारी बातें ऐसी पता होंगी जो कि नर्सरी के बच्चे को पता नहीं है। इसी प्रकार से लोग बोलते हैं कि हर धर्म ग्रंथ बराबर है, ऐसा वास्तवता है नहीं। ठीक है, वो ईश भावना भावित करने के लिए वो ग्रंथ हैं, लेकिन सारे ग्रंथ पूरी गहराई में भगवान के बारे में नहीं समझाते हैं। जिस प्रकार से एक छोटी डिक्शनरी होती है और एक बहुत बड़ी डिक्शनरी होती है, तो छोटी डिक्शनरी के सारे शब्द बड़ी डिक्शनरी में होते हैं लेकिन बड़ी डिक्शनरी के सारे शब्द छोटी डिक्शनरी में नहीं होते हैं। तो इसीलिए भगवद गीता को एक बार कोई व्यक्ति पढ़ेगा तब वो समझ पाएगा कि गहराई जो भगवान ने उन 700 श्लोकों में जिस गहरे ज्ञान को दिया है वैसा दूसरे अन्य ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत द्वारा वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। क्षमा कीजिएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रम को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं, यानी कि मानव जीवन शुरू होता है जब व्यक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास और क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, इस प्रकार से समाज की जब व्यवस्था होती है और इसका लोग पालन करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो मानव जीवन की शुरुआत होती है। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। तो इस बारे में हमने काफ़ी चर्चा कर चुके हैं कि व्यक्ति देश काल परिस्थिति के अनुसार इस धर्म का प्रकाशन भगवान और भगवान के प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, जितना कि लोग उस समय समझ सकें, लेकिन उद्देश्य यही होता है कि सबको कृष्ण भावना भावित कर सकें। हरे कृष्णा।